दसवां तेरा कोठा, लक्ष्मीकांत वर्मा, 1971। पृष्ठ संख्या 155। लक्ष्मीकांत वर्मा की परिगणना हिंदी के प्रयोगधर्मी कथाकारों में होती है। कथाकार के अतिरिक्त वे कवि और आलोचक भी हैं और उनकी एतद् विषय कृतियों में भी उनकी यह प्रयोगधर्मिता देखी जा सकती है। प्रस्तुत उपन्यास टेराकोटा में उन्होंने मनोहर श्याम जोशी के कुरु कुरु स्वाहा की भांति तेहरे कथानक को लिया है। टेराकोटा शब्द टेरा और कोटा के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्तियाँ। यहाँ वर्मा जी ने हमारे सांप्रतिक जीवन के पात्रों को मिट्टी की मूर्तियों के सदृश बताया है। वैसे दार्शनिक भाषा में मनुष्य को हमेशा से मिट्टी का खिलौना कहा जाता रहा है। इसमें मूल कथा तो रोहित और मीति की है, परंतु इस मूल कथा के साथ साथ मिस्टर बत्रा के निर्देशन में चल रहे एक नाटक की कथा भी संग संग चलती है, जो महाभारत के युद्ध के उपरांत बचे हुए कंबोज सेनापति, उनकी अंध पत्नी, तीन पुत्रियाँ ऋजुमिता, ज्योतिमिता और श्रुतिमिता, पांडव सेनापति कैशिकेय और सामंत रोहिताश्व आदि पात्रों को लेकर चलती है। ऋजुमिता और रोहिताश्व की कथा अनेक संदर्भों में मूल कथा से साम्य रखती है। इन दो कथाओं के साथ एक तीसरी समानांतर कथा गणेश और व्यास की है। ये लोग अनेक बार उपन्यास के मंच पर अवतरित होकर कथा के नए संदर्भों और घटनाओं के घात प्रतिघातों का विश्लेषण करते हैं। इस तरह यह उपन्यास टेक्निक की दृष्टि से अमृतलाल नागर कृत अमृत और विश्व तुलनीय है। डॉक्टर विवेकी राय के शब्दों में इस प्रकार आज के संदर्भ में मानवीय दृष्टि से देखी गई यह पौराणिक कहानी कहीं फैंटेसी के रूप में, कहीं समानांतर रूप में, कहीं समानांतर कथा के रूप में विकसित होती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन संदर्भ ग्रंथ डॉक्टर विवेकी राय प्रकर संयुक्त विशेषांक मई जून 1972 पृष्ठ संख्या 43। पैराग्राफ चेंज। इस तिहरे कथानक के बावजूद उपन्यास की मूल कथा तो रोहित और मिथि की कथा ही है। उपन्यास की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर की खुदाई से होता है। इस उत्खनन में महाभारोत्तर काल की कुछ मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, जिनको लेकर रोहित और मिथि में वार्तालाप होता है। रोहित मिथि से कहता है, इन्वर्टेड कॉमापन, आज भी दिल्ली में आदमी संतरस्त है, टूटा हुआ है, छत विछत है, पंगु है। फर्क केवल इतना ही है कि आज की पंगुता मानसिक है और आज से पहले हस्तिनापुर की पंगुता कायिक थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ टेरा कोटा, लक्ष्मीकांत वर्मा, पृष्ठ संख्या 8। रोहित और मिथि साथ साथ पढ़ते हैं और बाद में साथ साथ नौकरी भी करने लगते हैं। रोहित और मिथि में प्रेम है। रोहित मिथि से विवाह करना चाहता है, परंतु मिथि की स्थिति 55 खंभे लाल दीवारे की सुषमा जैसी है। उसकी पारिवारिक आर्थिक व्यवस्थाएं उसे नौकरी की ओर खींच ले जाती हैं। मिथि का परिवार देहरादून में है। उसके पिता पैरालिसिस से पीड़ित हैं। एक जमाने में वे बड़े दबंग व्यक्ति थे, परंतु इस बीमारी के कारण वे नारकीय जीवन बिता रहे हैं। उनके भीतर के पुराने संस्कार, पृष्ठ संख्या 156, उनके जीवन को और भी वेदनाग्रस्त और विषाक्त बना देते हैं। मिति के सामने अनेक समस्याएं हैं। उसकी बहन शोभा विधवा हो गई है और वह भी अपने तीनों संतानों को लेकर देहरादून पिता के पास आ गई है। छोटी बहन उमा और छोटे भाई राम की भी उचित परवरिश गरीबी के कारण नहीं हो रही। उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर भी मिति चिंतित रहती है। अतः वह मिस्टर खन्ना नामक एक व्यक्ति के ऑफिस में स्टेनोटाइपिस्ट तथा सेक्रेटरी की नौकरी करती है। इस नौकरी के साथ साथ वह आईएएस की तैयारी भी करती रहती है। इन सब के लिए वह दिल्ली के एक वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। अतः वर्किंग हॉस्टल का परिवेश भी हमारे सामने सादृश्य होता है। मिस बॉटली वाला, जया लिली, सीला इत्यादि नारी चरित्रों का कुछ परिचय यहाँ प्राप्त होता है। मिस बाटली वाला की उम्र 40 वर्ष की है, फिर भी वह अविवाहित है। ऐसी स्त्रियों में जिस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन और मानसिक विकृतियाँ होती हैं, उसका यथार्थ चित्रण लेखक ने किया है। मीति एक कृत्रिम और नाटकीय जिंदगी बिता रही है। वह कई सहेलियों के आगे झूठ मूठ बताती है कि रोहित से उसका विवाह हो चुका है। उसकी एक सहेली जया एक बार मिथि को डिनर पर आमंत्रित करती है, तब वह रोहित को साथ चलने के लिए कहती है, पर वह साफ इनकार कर देता है। इस पर मिथि अपने एक मित्र के सम्मुख भावोद्रेक को व्यक्त करती हुई कहती है, इन्वर्टकमा, अगर मैं रोहित की पत्नी बनकर उसके लिए खाना बना सकती हूँ, तो क्या वह मेरी सहेली की खातिर एक डिनर में मेरा पति नहीं बन सकता? इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ टेराकोटा लक्ष्मीकांत वर्मा, पृष्ठ संख्या 81। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार यहाँ महानगरीय जीवन के नाना आयामों तथा उसकी विसंगतियों को भी संकेतित किया गया है। अपने घर परिवार के लिए मिथि को मिस्टर खन्ना के यहाँ ऑफिस में काम करना पड़ता है। मिस्टर खन्ना मिसेस खन्ना से संतुष्ट नहीं है। मिथि स्मार्ट और सुंदर है, अतः वे उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। नौकरी की व्यवस्था के कारण मिथि मिस्टर खन्ना को एक हद तक छूट छाट लेने देती है। कई बार उसके फूहड़ मजाकों को भी बर्दाश्त कर लेती है। यद्यपि इन सब बातों में वह सदैव मर्यादा का पालन करती है और लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं करती, तथापि इन दोनों के संबंध को लेकर मिसेस खन्ना कुछ संकित सी रहती है। इस शंका के कारण ही अंततोगत्वा वह आत्महत्या कर लेती है। मिस्टर खन्ना पागल हो जाते हैं। मीति के प्रयत्नों से वे कुछ ठीक भी हो रहे थे, परंतु मीति रोहित से प्रेम करती है। इस बात का पता चलने पर वे अस्पताल से भाग जाते हैं। इस प्रकार मिस्टर खन्ना के दो छोटे छोटे बच्चे विक्की और सिमी की नैतिक जिम्मेदारी भी उस पर आ जाती है। पैराग्राफ चेंज। इस बीच में मीति IAS को पास कर लेती है और इलाहाबाद में ट्रेनिंग में चली जाती है। रोहित मीति पर किसी निर्णय पर पहुंचने का जोर डालता है। मीति उसे कुछ समय ठहरने को कहती है, क्योंकि उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनसे वह पहले मुक्त होना चाहती है। बहरहाल बिना विवाह के भी वह सभी प्रकार के पत्नी धर्म को निभाने के लिए प्रस्तुत है, परंतु रोहित उसके लिए तैयार नहीं होता। फलतः वह रोहित और शीला की शादी करवा कर ट्रेनिंग के लिए रवाना हो जाती है। पृष्ठ संख्या 157। पैराग्राफ चेंज। इसके पूर्व मिथि की माँ जब बीमार पड़ती है, तब मिथि देहरादून जाती है। यहाँ पर लेखक ने मध्यवर्गीय जीवन मूल्यों और उसकी घुटन को भी चित्रित किया है। मिथि की माँ पुराने जीवन मूल्यों वाली स्त्री है। उसे यह पसंद नहीं कि शोभा का दूसरा विवाह किया जाए, परंतु मिथि किसी तरह माँ को समझा बुझा लेती है। प्रकाश एक उदार हृदय और आदर्शवादी युवक है। उग्रतारा के कामेश्वर की भांति वह भी स्त्री की योनि सुचिता जैसे पुराने विचार को न केवल नकारता है, बल्कि किसी विधवा से विवाह करके उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहता है। मिथि उसके विचारों से काफी प्रभावित होती है। शोभा भी उसे चाहने लगती है, अतः मिथि उन दोनों का पुनः विवाह करा देती है। पैराग्राफ चेंज। मिथि जब ट्रेनिंग के लिए चली जाती है, उसके बाद बीच में 12 साल का अंतराल दिया है। मिथि ने अविवाहित रहने का निर्णय कर लिया है और उस नियम पर अटल रहते हुए वह कमिश्नर के पद पर आसीन हो गई है। छोटी बहन उमा तथा भाई राम को उसने ऊंची शिक्षा दिलाकर क्रमशः डॉक्टर तथा इंजीनियर बना दिया है। मिथि के पिता की बीमारी भी कुछ कुछ ठीक होने लगी है। माँ की आँख का ऑपरेशन सफल रहता है और उसे थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। उमा अपने सहपाठी नरेश को चाहती थी, अतः मिथि उन दोनों का विवाह करवाती है। विवाह के अवसर पर रोहित शीला को भी निमंत्रित करती है। पैराग्राफ चेंज। उमा के विवाह वाले प्रसंग का लेखक ने बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मिथि उमा को एक ट्रेडिशनल ब्राइड के रूप में देखना चाहती है। विवाह की एक एक विधि वह बहुत ही ध्यानपूर्वक एवं करीने से करवाती है। ऐसा लगता है कि अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति मानो वह उमा में कर लेना चाहती है। स्वयं की शादी नहीं हो सकी, अतः बहन की शादी करवा कर वह कृतकृत्य हो जाती है। वह खूब उत्साह से दौड़ दौड़ कर कार्य करती है, परंतु शादी के समय उसे दौरा पड़ जाता है और विदा के समय वह अचानक गायब हो जाती है और नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को दूसरे स्टेशन पर मिलती है। शायद वह खुलकर रो लेना चाहती थी, परंतु रोहित तथा अन्य अतिथियों की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती थी। पैराग्राफ चेंज। डॉक्टर देसाई के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, प्रस्तुत उपन्यास शिक्षित नारी की अभिशप्त नियति को सारी रिक्तता और तिक्तता के साथ उभार सका है। उषा प्रेमदा कृत पचपन खंभे लाल दीवारें की सुषमा जहाँ पूर्णतया टूटी हुई प्रतीत होती है, वहाँ मीति भीतर से टूटी है, पर साथ ही अनेकों को बनाने का एहसास उसके व्यक्तित्व को दृढ़ आधार प्रदान करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ 60वां हिंदी उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 51 पैराग्राफ चीन। यहाँ पर मीति की ऊंची प्रतिष्ठित नौकरी तथा उसकी ठोस मानसिकता जो परिवार प्रतिबद्धता को एक जीवन मूल्य के रूप में अंगीकृत करती है के कारण मीति मानसिक टूटन के बावजूद काफी ऊपर उठी हुई सी प्रतीत होती है। उसके व्यक्तित्व में इन्वर्टेड कॉमा पेन मजा तो तब है गिरते को थाम ले साकी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज का गहरा एहसास एक दृढ़ आस्था और संबल प्रदान करता है। 11वां बेघर ममता कालिया 1972 पृष्ठ संख्या 158। बेघर ममता कालिया का एक ऐसा उपन्यास है जो हमारे समाज में व्याप्त संकीर्णता और दकियानुसी के विपरीत एवं विनाशक परिणामों को व्यंजित करता है। एक तरफ जहां हमने स्पेस युग में प्रवेश किया है और 21वीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, वहां जातीय ज्ञान जैसे विषयों में हमारा यहाँ के 80% से उपरांत युवक युवतियों का अंधेरे में भटकना देखा जा रहा है और जातीय विज्ञान से जुड़े हुए बहुत से मामलों में उनके विचार मध्ययुगीन अंधेरों से घिरे हुए हैं। जाति ज्ञान के विषय में हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का मानना है कि वह प्राकृतिक है। उनका तर्क है कि सृष्टि में जो पशु पक्षी और अन्य मानवेतर प्राणियों में नर मादा नैसर्गिक ढंग से ही एक दूसरे को प्रेम करने की कला संपादित कर लेते हैं, फिर मनुष्य को ही क्यों इस विषय का विशेष ज्ञान देना चाहिए। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या मनुष्य अन्य विषयों में मानवेतर प्राणियों सा व्यवहार करता है? क्या वह मानवेतर प्राणियों की भांति भोजन करता है? क्या वह मानवेतर प्राणियों की भांति निवास करता है? क्या वह मानवेतर प्राणियों की भांति रहता है? जब इन सब मामलों में मनुष्य ने जीने के विशिष्ट तौर तरीकों को विकसित किया है, तो फिर उसका मैथुन कर्म ही क्यों पशु पक्षीवत रहा है? दूसरे मानवेतर पशु और प्राणी मनुष्य की तरह सोचते विचारते नहीं हैं, वहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास भी नहीं। उन्हें जातीय जीवन भोगने के लिए विवाह के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अभिप्राय यह है कि मनुष्य जो जीवन 30-35 वर्षों तक जीने वाला है, उसको जीने के लिए उसकी तैयारी कितनी है, उसका ज्ञान कितना है, उसने एतद् विषय कितना ज्ञान प्राप्त किया है, यह सब मानवीय सरोकारों के जीवन स्पर्शी मुद्दे हैं और उक्त विषयों की अनभिज्ञता हमारे युवक युवतियों में न होने से वे उसकी आपूर्ति बाजारू पुस्तकों और नीम हकीमों तथा वैद्यों से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनकी जिंदगी कई बार मिट्टी में मिल जाती है। गलतफहमियों की शिकार होकर वे स्वयं अपनी सुखी गृहस्थी की लंका में आग लगा देते हैं और जब उन्हें सही स्थितियों का ज्ञान होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। प्रस्तुत उपन्यास के संदर्भ में इतनी सुदीर्घ भूमिका इसीलिए आवश्यक हो जाती है कि जातीय विषय की अज्ञानता के कारण इस उपन्यास के नायक नायिका परमजीत और संजीवनी बेघर हो जाते हैं। उनके सुखी संसार में आग लग जाती है जहां दोनों ने एक सुंदर सुखपूर्ण जीवन को जीने के लिए सपने का नीड बनाया था। एक छोटी सी शंका के कारण उनके तिनके तिनके बिखर जाते हैं। पैराग्राफ चेंज। वस्तुतः हमारे यहाँ यौन विज्ञान की नासमझी के कारण बहुत सी भ्रांत धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। लड़की की अविकसित यौवना तथा कौमार्यावस्था के संदर्भ में भी ऐसी ही अनेक गलत धारणाएं आदिम युग से चल रही हैं और आश्चर्य तो इस बात पर होता है कि बहुत से शिक्षित लोग भी इन धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं। लड़की के जनन अंग में एक हल्का सा झीना पर्दा होता है जिसे झिल्ली या कुमारी पटल या मैडन हेड कहते हैं। यह पर्दा बाल्यावस्था में होता है। पहले छोटी उम्र में शादियां होती थी तब यह पर्दा बरकरार रहता था, परंतु अब लड़कियों का विवाह पुख्त अवस्था में होता है तथा लड़कियां भी अनेक प्रकार के व्यायाम, साइकिल चलाना इत्यादि कार्य करती हैं, तो बहुत संभव है कि वह झिल्ली अपने प्राकृतिक रूप में न रहे। पृष्ठ संख्या 159। झिल्ली के रहने पर प्रथम संभोग के समय थोड़ा सा खून आता है, अतः जब यह खून नहीं आता तो बहुत से लोग सुहागरात से ही अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका कुशंका करने का श्री गणेश कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन के प्रारंभ में ही शंका कुशंका के इन बादलों के कारण उनके जीवन में कलह शुरू हो जाता है। अतः स्त्री की योनि में स्थित कुमारी पटल का यह पर्दा बहुतों के लिए अभिशाप बन जाता है। इस वैज्ञानिक युग में कुछ अरब देशों में यह प्रथा है कि शादी की प्रथम रात में पति पत्नी एक अलग कक्ष में जाते हैं। कक्ष के बाहर उनके रिश्तेदार इंतजार में खड़े रहते हैं। संभोग के पश्चात जैसे ही पति बाहर आता है, वे शयन कक्ष में दौड़ जाते हैं और सुहाग सैया पर पड़े रक्त के धब्बों को देखकर नाचने कूदने लगते हैं, क्योंकि उन्हें नववधु की पवित्रता का सबूत मिल जाता है। यदि दुर्भाग्य से सेज पर धब्बे न दिखे तो उस स्त्री को कुलक्षणी, भ्रष्टा, पतिता और चरित्रहीन समझकर निकाल दिया जाता है। दरअसल स्थिति यह है कि कौमार्यावस्था में योनि पटल रहना ही चाहिए, यह एक अवैज्ञानिक एवं अज्ञान मूलक धारणा है। पैराग्राफ चेंज। प्रस्तुत उपन्यास का परमजीत एक ऐसा ही दकियानूस युवक है। उसने बाजारू पुस्तकों में पढ़ रखा था तथा अपने कुछ मित्रों से भी सुन रखा था कि कुंवारी लड़की के झिल्ली होती है जिसे टूटने पर रक्तस्राव होता है। परंतु परमजीत जब अपनी प्रियतमा पत्नी संजीवनी से विवाह के उपरांत प्रथम बार संभोग करता है, तब संजीवनी न तो ज़्यादा चीखती चिल्लाती है और न हाय तौबा मचाती है और न ही उसे रक्तस्राव होता है। परिणाम स्वरूप परमजीत के मन में यह ग्रंथि बन जाती है कि वह संजीवनी के जीवन में आने वाला प्रथम पुरुष नहीं है। उसके जीवन में पहले भी कई पुरुष आए होंगे। अतः वह संजीवनी को उल्टा समझने लगता है, जिसके कारण उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। वह बात बात में संजीवनी को डांटने फटकारने लगता है, उसके ऊपर व्यंग कसता है और इन कारणों से विवाह के पूर्व के कोर्टशिप के दिन भयंकर नरक यातना में बदल जाते हैं। संजीवनी को लेकर परमजीत के दिलो दिमाग में संशय का कीड़ा इतना अधिक कुलबुलाने लगता है कि अंततोगत्वा वह संजीवनी से विवाह विच्छेद कर लेता है। पैराग्राफ चेंज। परमजीत बाह्यतया एक आधुनिक युवक है। बंबई जैसे महानगर में वह रहता है, परंतु आधुनिकता सिनेमा, फिल्म, फैशन और बाहरी चकाचौंध तक सीमित है। पढ़ने में वह काफ़ी तेज नहीं रहा, परंतु व्यवसायिक बुद्धि उसे विरासत में मिली थी। फलतः बंबई की एक कंपनी में वह चीफ एजेंट हो जाता है। चीफ एजेंट होने के कारण वह फॉरवर्डनेस का दावा करता है, परंतु संजीवनी के साथ विवाह करने के उपरांत उसकी अर्धशिक्षित, अविकसित, अधकचरी दकियानूस मानसिकता प्रकट होने लगती है। पैराग्राफ चीन। संजीवनी एक सुशिक्षित, सुशील एवं संस्कारी लड़की है। वह परमजीत के बाहरी व्यक्तित्व से आकर्षित हो उससे विवाह तो कर लेती है, परंतु बाद में उसे ज्ञात होता है कि ऊपर ऊपर से फॉरवर्ड दिखने वाला यह व्यक्ति मध्यकालीन मानसिकता में जी रहा है। परमजीत के व्यवहार से वह बहुत दुखी हो जाती है और अंततः उनका विवाह तलाक में परिणत हो जाता है। इस प्रकार वह बेघर हो जाती है। दूसरी तरफ परमजीत तलाक के बाद रमा नामक एक दूसरी लड़की से विवाह करता है। पृष्ठ संख्या 160। रमा अत्यंत फूहड़ तथा कंजूस प्रकार की स्त्री है। वह संकीर्ण विचारों वाली, स्वार्थी और दकियानूस भी है। परमजीत दकियानूस होते हुए भी बाह्यतया थोड़ा शौकीन प्रकार का व्यक्ति था। उसे होटल, सिनेमा, नाटक आदि का भी शौक था। अपने अत्यधिक कृपण स्वभाव के कारण वह परमजीत की अभिरुचियों तथा स्वभाव का भी ख्याल नहीं रखती। फलतः परमजीत का स्वास्थ्य गिरने लगता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार वह संजीवनी के बेघर होने की कथा मात्र नहीं, रमा के भी बेघर होने की कथा है। वस्तुतः चार दीवारों का नाम घर नहीं है। घर का मतलब है प्रेम, विश्वास, शांति, संतोष और उष्मा। दाम्पत्य जीवन की बुनियाद ही प्रेम और विश्वास पर रखी जाती है, और जहाँ व्यक्ति प्रेम और विश्वास की इस धुरी को चूक जाता है, वहाँ उसका जीवन गड़बड़ाने लगता है। यशपाल कृत करवा का व्रत कहानी का कन्हैया लाल नासमझी में अपनी पत्नी को मारता पीटता था, परंतु बाद में वह संभल जाता है। जबकि प्रस्तुत उपन्यास में परमजीत की नासमझी ही उसे ले डूबती है। मानव जीवन की यही त्रासदी है कि यहाँ मन का मीत प्राय नहीं मिलता, परमजीत का दुर्भाग्य यह है कि उसे मन का मीत मिला, परंतु अपनी अधकचरी दकियानूस मानसिकता के कारण वह उसे संभाल नहीं पाया।